Yeah, Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Mishnari, wise number
821. پہلے پاٹھ میں فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان مولا نے بڑی یکتی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اس نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور اسی مولا نے تم کو گربھاواس دیا. اگر تم ایمانداری سے سچائی کے اوپر چل کے اس کی سیوا کرو گے تو تمہیں مکتی ملے گی, مولا کا دیدار ملے گا. یہ پہلا پاٹ ہے. فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے, کٹمب قبیلہ بہت بنایا, خوب پیسہ کمایا, مکان بنائے. کٹمب قبیلہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے فرض میں ہے, لیکن یہاں جو پیر کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے. کٹمب پریوار جیوڑے گھن کریا, جیوڑو آوی پڑیو جنجال. کٹمب بنانا, فیملی بنانا, اپنی روزی کمانا اور کٹمب قبیلے کو پالنا ہمارے مذہب کے اندر عبادت کا درجہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے جنجال میں پڑ گئے, مطلب کہ اسی کے اندر ہم لپٹائے گئے اور ایسے اس کے اندر انوالو ہو گئے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا, جس نے ہمیں گربھاواس دیا, جس نے زمین آسمان بنایا, اس کے پاس ہمیں مر کے ایک دن جانا ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ کاچی کایا پنڈ ڈھڑی پڑے. اس کو کاچی اس لیے کہا کہ چھوٹی سی بات کے اندر لہو نکل آتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, کوئی 10 inch کے سانپ نے کاٹ لیا تو مر گیا. انسان کا جو بدن ہے وہ ایک کانچ کے پیالے کی طرح, کے گلاس کی طرح سمجھو, اس کو اٹھا کے ہاتھ سے پھینکو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے پیروں کے زمانے کے اندر ایسے گلاس اور بوٹلیں نہیں تھیں, تو انہوں نے چھوٹے سے مٹکے سے, مٹی کے مٹکے سے اس کا ہمیں داخلہ دیا, مثال دی. تو فرمایا کہ کاچا مٹی کا مٹکا ہے, وہ ہاتھ سے گرے جیسے ٹوٹ جاتا ہے, ایسے تمہارا بدن ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان کوئی ضرور ایسی 100 برس کی عمر میں جائے تبھی وہ مرے. کسی بھی وقت انسان مر سکتا ہے, اینی ٹائم. 6 مہینے کا بچہ بھی مر سکتا ہے اور مرتے ہیں. 2-5 برس کے بچے بھی مرتے ہیں, 10-20 برس کے جوان مرتے ہیں, 30-40 برس کے, 50 برس کے مڈل ایج والے مر جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہے زندارو, ارے ماں کے پیٹ سے ہی مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, جیتے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں, بڑھ جاتے ہیں, 8 مہینے تلک بڑھتے رہے, پھر کچھ کارن ہو گیا, مر گئے. انسان کی زندگی کیا ہے؟
گر ویرا
काचार घड़ोआ जैसा समय आदमी रे हाथे पड़े आ भांग। तुम कच्चे मिट्टी के मटके जैसे हो, हाथ से गिरे टूट के। ये हमारी हालत, हमें इस सदरदीन ने हमें जगाने के लिए कही। इंसान को जब दो पैसे आते हैं तो मगरूर हो जाता है, कोई कुर्सी मिलती है तो मगरूर हो जाता है, कोई इज्जत मिल गई तो मगरूर हो जाता है, कोई ताकत वाला बन गया अच्छी तरह से बॉडी बिल्ड की तो वो कहता अभी मेरे जैसा कोई नहीं, अब भाइयों में कोई खूबसूरत हो गई तो वो कहती अभी मेरे जैसी कोई नहीं। दिनदारों, ये दुनिया के अंदर हमारी किसी भी तरीके की मगरूरी नहीं चलती। खुदा ने एक के ऊपर दूसरे को बना रखा है। ये तुम्हारी काती काया पिंड ढड़ी पड़े, लेखो साहेब ने हाथ। हजरत मौलाना धनी सलामत सरकार शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि, मौला ने बैतुल ख्याल के फरमानों के अंदर और भी दूसरी मंडलियों में इस किस्म के फरमान किए हैं। एक दिन मौला फरमाया हमें इस दुनिया को छोड़ना है। मौला फरमाया कि इस दुनिया के अंदर जो हमारा रहठान है, हमारा जो स्टेशन है, वो थोड़े टाइम के लिए है। और इस्लाम के अंदर दूसरे तरीके से सब बोलते हैं और जगह, कि इस्लाम के अंदर ये ईमान का भाग है इस बात के ऊपर विश्वास रखना कि हमें मर के खुदा के पास हिसाब देना है। और हम रोजाना 3 वक्त खुदा ताला की इस बात को, इस ताकत को याद करते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, हम पहले ही पाठ में पढ़ते हैं, हिसाब किताब के दिन का वो धनी वो मालिक है। यानी हम ऐलान करते हैं, हम अपने आप को समझाना चाहते हैं कि वो हिसाब किताब लेगा और जरूर लेगा। उसके हाथ में लेखा है, वो छोड़ेगा नहीं। और लेखा तो हमको बहुत सी चीजों का दुनिया के अंदर डेबिट क्रेडिट होता रहता है। हम बहुत सी नेकियां करते हैं, उसके सामने बहुत से गुनाह धोए जाते हैं। बहुत सी ऐसी नेकियां हैं कि एक नेकी से 10-20 गुना मिट जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा गुना होता है कि 20-25 नेकियां मिट जाती हैं। ये नेकी और बदी की लड़ाई जारी है। इसको नेकी को कहते हैं खैर, बदी को कहते हैं शर। तो ये खैर और शर अल्लाह की किताब कुरान पाक के अंदर इसका बड़ा जिक्र है। खैर कहते हैं वर्चू, नेकी, और शर कहते हैं ईविल को। हम पुरानी जब दुआ पढ़ा करते थे तो उसके अंदर बड़े सजदे से पहले एक दुआ आती थी, दुआ नियत खैर, इलाही तू खैर करिए, आकिबत जो खैर करिए, हितमंद खैर करिए। हितमंद यानी अभी और फ्यूचर में खैर करिए। अठपोहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, यानी 24 घंटे एक एक मिनट एक एक घड़ी या मौला हमारी खैर और अच्छाई से गुजरे। वाके घाटे जो आदमी अपने रास्ते के ऊपर मुसाफरी कर रहा है और जो आदमी घाट के ऊपर अपनी दुकान के घर पे बैठा हुआ है, वाटे घाटे राह मुसाफरी है, जो देश छोड़ के दूसरे देश जा रहा है, रहिए दरगाहिए मौला के रास्ते के ऊपर, जो मिशनरीज जा रहे हैं जो लोगों को हिदायत करने के लिए और मौला के काम के ऊपर जो जा रहे हैं उनको राही कहते थे। पंजे भाई हैं जो जमात के अंदर आदमी है वो पंजे भाई हैं, इश्कदारी हैं जो मौला के साथ प्रेम और मोहब्बत रखते हैं, जुमले जमात जो खैर करिए। दुनिया भर की जितनी भी जमातें हैं या मौला उन सब का भला चाहता हूँ, भला होवे, खैर यानी भलाई। या अली आले नबी औलाद अली जो खैर करी, علی نبی کی جو اولاد ہے میں اس کا بھی بھلا چاہتا ہوں. علی نبی کی اولاد میں حاضر امام تو ہمارا مالک ہے, اس کے پاس تو ہم مانگ رہے ہیں. شہزادہ رحیم ہیں, شہزادہ حسین ہیں, پرنس علی امین ہیں, پرنس صدر الدین ہیں, یہ بھی آل علی اولاد نبی مولا کے اہل بیت, ہم ان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. یالی رکھیں ظالم جو ظلم کا نا, اے مولا جو ظالم ہے نا اس کے ظلم سے ہم کو بچا کے رکھنا. یالی رکھیں شر شیطان کا نا, یا مولا شیطان کی ایول سے, ایول اسپرٹ سے, اس کی بدی سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا علی رکھی اتنی کنا اور ان سے بھی مجھ کو بچا کے رکھنا جنہیں کی تجھے سمجھائے نہ, جو تجھے نہیں جانتے, جن کو تیری شناخت نہیں ہے. یا مولا ان سے بھی مجھے دور رکھنا. یا علی تو خیر کریے, خیر دی عرض وینتی, شاہ تجھے حضور میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیندارو کیسی اچھی دعا پی صدر دین نے ہمارے لیے بنائی. وہ دعا ہم آج بھی اپنی دعاؤں کے بعد, دعا پڑھنے کے بعد جب مانگ سکے ہو مانگو. تو دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں اور ساری خدا کی خدائی کے اندر رائٹ اور رونگ کی لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف شیطان ہے, ایک طرف گڈنس ہے, ایک طرف ایول ہے, ایک طرف طاقت ہے, ایک طرف نرمی اور حلیمی ہے, ایک طرف ظالم ہے, ایک طرف مظلوم ہے, ایک طرف دئیت ہے, ایک طرف حضر امام ہے. ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے, ہمارے اندر بھی ہمارے خیالات جو ہیں, ہمارے وچار جو ہیں, ان کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی اچھے اور نیک وچار کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جب یہ شیطان گھس جاتا ہے تو ہم کو بدی کے خیال آتے ہیں. ہمارے اندر بھی اس بات کا جھگڑا جاری ہے, مگر جب امام کا خیال ہمیں آتا ہے, جب ہم مولا کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو مولا ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے, یہ اس کا ایک ذات کا لشکر ہے. اسی گنان کے اندر ایک اور پاٹ ہے, اس کے دو چار مطلب ہوتے ہیں. اے جی سوامینا دڑ جارے چال سے پیارے ست دھرمنو تھائے سے وہوا رہو اے اڑیا چاری دیا ابھار سے پل لے سے تے سچا یار ہو. جب اس سوامی کے مولا کا جب لشکر آتا ہے یعنی اس کی قوت اور مدد آتی ہے تو اس وقت ست دھرم کا ویوہار ہو جاتا ہے. ہم جب مولا کو یاد کرتے ہیں تو مولا کی قوت ہمارے اندر آ جاتی ہے, تو ہمارے اندر بھی ست دھرم کے وچار پیدا ہو جاتے ہیں. اس وقت جو انیاں چاری ہیں, جو ادھورے ہیں ایمان کے, یہ واقعہ تو قیامت کے دن کا ہے لیکن میں آپ کو اندر کی بات بھی سنا رہا ہوں, کہ جو ادھورے ہوتے ہیں وہ امام کے لشکر سے بھاگ جاتے ہیں, بدیاں بھاگ جاتی ہیں اور مومنوں کو پھل ملتا ہے. اب اس ورانی کے اندر ایک بہت سمجھنے جیسی چیز ہے, دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو. ایک صدر دین فرماتے ہیں کہ دودھ کے اندر جو برائی ہے اس کو دیکھو. دودھ ماں دودھ کے اندر ویرا دیکھو کارمو, اینے دودھ ہے تے پڑ سو جنجال, ایسا دودھ پیو گے بیمار پڑ جاؤ گے. داغ دیکھو ویرالی تنا, داغ کہتے ہیں فلیگ کو, نشان کو. ہم کپڑے کے اوپر کوئی داغ پڑ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی نشان کہتے ہیں نا, یہاں داغ کا مطلب نشان ہے. علی کے نشان کو دیکھو جو سچا ہے. دودھ کیا ہے؟ دودھ ہمارا ایمان ہے, ہمارا دین ہے. ये पाक और पवित्र है दूध की तरह, लेकिन जब ईमान के अंदर खलल आता है, जब हमारे दीन के अंदर बदी और बुराई और गुनाह शामिल हो जाते हैं, तो पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं वो ईमान किस काम का, वो धर्म किस काम का। ऐसे धर्म ऐसे ईमान के साथ कि जिसके अंदर बदी शामिल हुई होवे, तुम जंजाल में पड़ जाओगे, दुखों में पड़ जाओगे। दूध माँ देखो वीरा कारमो, एने दूधे से पड़ सो जंजाल। अपने ईमान को हमेशा सलामत रखना चाहिए, हमारा ईमान पाक साफ रहना चाहिए। अगर ईमान खराब हो गया तो सब कुछ बिगड़ गया, जनमारा खराब हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ है वो ईमान ही है। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया एक आदमी कितना ही मालदार क्यों ना होवे, लेकिन कभी उसके दिल में ईमान नहीं है तो वो रस्ते की धूड़ की तरह है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह हमारे दिल के अंदर अगर ईमान नहीं, या हमारा ईमान ढचू पचू है, या हमारा ईमान कमजोर है, या हमारे ईमान के अंदर दुनिया की खराबियां और बदियां लोह वो लालच वगैरह भी मिक्स हुआ है, उस ईमान से हमें नजात मिल नहीं सकती, नहीं मिल सकती। एक जिनान के अंदर पीर ने हमें एक रास्ता बताया है, जीर राजा काया छे कुपो ने मन छे कस्तूरी तेने सत पंथ नो ढाकन दीजे। तुम्हारा जो बदन है वो एक बर्तन की तरह है, कुप्पा कहते हैं कि जिसके अंदर तेल वगैरह ऑयली स्टफ घी रखा जाए, वो चमड़े का होता था पुराने जमाने में। अभी हमारे घर के अंदर बर्निया हैं, हमारे घर के अंदर प्लास्टिक के कंटेनर हैं, कांच के कंटेनर भी हैं, तो ये हमारा बदन एक कंटेनर है। उसके अंदर जो तुम्हारा दिल है वो कस्तूरी की तरह है, इंग्लिश में कस्तूरी को मस्क कहते हैं, MUSK, मस्क। मस्क एक किस्म का जानवर है, उसके अंदर से निकलता है, वो जानवर डियर फैमिली का है। जैसे कि इम्पाला बहुत बड़ा होता है, गाय से छोटा, लेकिन बकरे से बड़ा होता है इम्पाला। इम्पाला की फैमिली है कि जो हिमालय पर्वत के आजू बाजू में नीचे वैलीज में रहता है। दुनिया के अंदर ये इम्पाला टाइप का जो मस्त इम्पाला है वो या तो इंडोनेशिया में होता है या ये हिमालय के नीचे है, और एक जमाना था कि चाइना में होता था, लेकिन अभी वो भी एक्सटिंक्ट हो रहा है, मिट रहा है। उसके पेट में जिस तरह दो साइज में किडनी होते हैं, किडनी की साइज का ही लेकिन थोड़ा सा छोटा टेबल टेनिस का बॉल होता है ना, इतनी साइज होती है, कभी कभी इससे थोड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राउंड शेप होती है, और उसके ऊपर बाल होते हैं। वो इस इम्पाला की फैमिली में जो स्पेशल फैमिली है उसको मस्क इम्पाला कहते हैं। उसको जब इस पेट काटते हैं तो उसके अंदर से राइट साइड किडनी के पास ही वो होता है, उसको वो काट लेते हैं, और कभी उसको काटो और अंदर से कॉफी के रंग का लेकिन बहुत ही सॉफ्ट मैटर निकलता है। उसमें इतनी तेज बास होती है कि जो आदमी इसको काटते हैं, इसको कहते हैं नाफा, कस्तूरी का नाफा। जो आदमी इसको काटते हैं वो अपनी नाक के ऊपर कपड़े रख के काटते हैं, इतनी उसकी तेज परफ्यूम खुशबू होती कि आदमी बेहोश हो जावे जिसने पहले कभी नहीं सूंघा होवे, और जिसको आदत पड़ जाती है उसको भी हेडेक हो जाती है। यह कस्तूरी बहुत कीमती चीज है, आज भी दुनिया में मिलती है, हो सकता है 5-7 हजार रुपया या $1,000 जितना उसके एक तोले की वैल्यू है। इसमें से बहुत सी चीजें बनती हैं, दवाइयां भी बनती हैं। एक कस्तूरी का छोटा सा कुछ भाग रख दो तो थोड़े टाइम के अंदर पेट्रोल की तरह वो डिजोल्व हो जाएगा, इवेपोर हो जाएगा, उड़ जाता। फिर ने गिनान ने फरमाया तुम्हारा जो शरीर है वो एक कंटेनर है, और तुम्हारा मन कस्तूरी की तरह कीमती खुशबूदार है, लेकिन उसके अंदर एक अवगुण है कि वो हवा में उड़ जाता है, उसको कभी तुमने नंगा रखा तो तेने सतपंथ नु ढाकन दीजे। मजहब के ईमान के ढक्कन से, ढक्कन कहते हैं लिड से, उसको ऐसी जगह ऐसे कंटेनर में रखो कि जो एयर टाइट होवे, अंदर उसकी बास बाहर निकल ना सके। जिरे राजा काया छे कुपो मन छे कस्तूरी तेने सत पंथ नु ढाकन दीजे। कबहू कबू ऐसा वाये जो वह से नाम साहेब जी काली जे रे दोरी ओड़म कंद बार वही ने छूटो आगड़ मार्ग विषमो दिसे। जिरे राजा दिसे, मैंने जानबूझ के दोरी ओड़म कंद ताकि आपको पता लगे कि शब्द क्या है। दोरी कहते हैं, धोरी यानी बैल, ओड़म यानी अपने कंधे के ऊपर उठाना, कंध कहते हैं कंधे को, शोल्डर को। धोरी ओड़म कंध बार वही ने छूटो, ए बैल तेरे को ये वजन ये बोझा उठाना ही पड़ेगा। आगड़ मार्ग वस्मो दिशे, ध्यान करके ये वजन उठाओ क्योंकि आगे रास्ता बहुत खराब है। तो पीर का कहना यूं है, तुम्हारे मन जो है वो कस्तूरी की तरह है, बहुत कीमती है लेकिन हवा में उड़ जाता है। उसको सतपंथ का ढक्कन दो। कभी ऐसा हो गया, कुछ गुना हो गया, कुछ भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, तो जल्दी से मौला की मदद मांगो, नाम साहेब का लीजिए। इस तरह हम अपने दीन को, अपने ईमान को संभाल के रखें। फरमाते हैं, तुमने कुटुंब परिवार बहुत किया, दुनिया के अंदर तुमने बहुत मजा किया, लेकिन जब हिसाब आ गया, हिसाब देना पड़ेगा, उस वक्त क्या करोगे? हमारा मजहब जो इस्माइली दीन है, उसके अंदर हमें दुनिया में साधु बन के, बाल बच्चे छोड़ के, घर बार छोड़ के 24 घंटे तस्बीह निकालने का हुक्म हमें नहीं है। दुनियादारी भी रखो, दीनदारी भी रखो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, इलम हासिल करो, एजुकेशन लो, टेक्निकल साइड देखो, साइंस में भी आगे जाओ, मैटर के अंदर भी आगे जाओ, रूहानियत के अंदर भी आगे जाओ, दीन और दुनिया दोनों कमाओ। हमारे मजहब ने दोनों को हाथ में रखा है, इसलिए कि खुदा ताला ने दुनिया के अंदर बाल बच्चे बनाए, दुनिया के अंदर खाने पीने के लिए उसने मेहनत और स्ट्रगल करने का हुक्म किया। जो आदमी, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, जो आदमी नेकी के साथ अपना रोजगार कमाता है, मेहनत से खुदा को याद करता है, तो रोजगार में 5, 7, 8, 10 घंटे जितने वो अपना व्यापार करता है वो इबादत में जाते हैं। जो आदमी रात को सोते वक्त मौला को याद करके सोता है, इमाम फरमाया उसकी सारी रात की जितनी भी नींद के कलाक है मैं इबादत में लेखता हूं। तो हमारे मजहब के अंदर दुनिया और दीन दोनों की सलामती होनी चाहिए, दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 100% दीन लेके यानी तस्बीह माला फेरते रहें और दुनिया के जो हमारे फर्ज हैं वो हम पूरे ना करें, वो नहीं होना चाहिए। हमको ये भी मना किया है कि तुम दुनिया की मौज शौक में ऐसे फंस जाओ कि जमात खाना भी भूल जाओ, दुआ भी भूल जाओ, दसवंत भी भूल जाओ और नास्तिकों जैसे बन जाओ, वो भी हमको मना किया है। दोनों तरफ समतोल होना चाहिए। मौलाना अली शाह महबाब इमामत का जौमा था, फिर शाहबुद्दीन शाह पीर थे। आपको मालूम है फिर शाहबुद्दीन शाह कौन थे? अली शाह महबाब के बेटे थे, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे, उनके पास पीरी जौमा था। दोनों शाह पीर बम्बई के खड़क जमात खाने में जो चीफ दरखाना है वहां आए, कांवड़िया हाजी मौला के साथ थे। इस जमात खाने के अंदर कांवड़िया हाजी के दो तरह बैठे हैं, उनकी लड़की के लड़के यहाँ एक कामड़िया अब्दुल मोहम्मद और कामड़िया हाजी नजर अली के दोहतरे हैं, मौला के साथ हुजूर में थे। एक भाई कामड़िया हाजी के पास आके कहती है, कामड़िया साहब मेरा धनी हर रोज जमात खाने जाके रात के खाने के बाद सो जाता है, घर नहीं सोता, 2 बरस हुए हैं। कामड़िया हाजी मौला को अरज की के खुदावंद ये औरत कहती है कि मेरा खामिन बहुत नेक है, अच्छा है, लेकिन खाना खा के घर से जमात खाने चले आता है। वो जमाने के अंदर बहुत से लोग एक ब्लैंकेट और तकिया लेके जमात खाने आके सोते थे। वो इसलिए सोते थे कि सुबह 3 बजे उठ के इबादत करें। कई लोग घर से नहीं आ सकते थे और कईयों के घर दूर थे, इसके लिए वो अपना एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेके इधर आ जाते थे। अली शम्मा बाप ने कमरिया हाजी को कहा, इसको पूछो कि तेरा मर्द इधर हाजिर है जमात के अंदर? कहने लगी हाँ है। फरमान किया कामड़िया हाजी को, उसको बुलाओ। तो एक वॉलंटियर को बुलाया, औरत ने दिशा दिखाई, खुद तो मर्दों में जा नहीं सके। वो जमाने में छेड़ा निकालते थे, यानी घूंघट निकालते थे, औरतें जो अपने सिर के ऊपर दुपट्टा डालती थी यहां तक लंबा होता था, कोई उसके मुंह नहीं देख सकता था। इंग्लिश में उसको वेल कहते हैं। मर्द को बुलाया, दसवंदी इबादत वाला नेक आला दर्जे का मोमन मौला के हुजूर में खड़ा हुआ, बदन कांपने लगा, मौला के डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अली शमा बाप हमेशा फारसी जबान बोलते थे, कमरे हाजी को कहा, इसको पूछो कि तेरी औरत ये शिकायत लेके आई कि तू घर पे नहीं सोता, सच है? कहते हाँ खुदावत, मैं घर मेरा दूर है, मैं जमात खाने में सोता हूँ सुबह इबादत के लिए। कितना टाइम हुआ? खुदावंद 2 बरस हुए। मौलाना अली शमा बाप फरमाया, तुम जवान हो, तेरी औरत जवान है, तुम अगर घर पे नहीं सोओगे और कभी तुम्हारी औरत से कोई गुनाह हो गया तो तेरी इबादत सब खत्म हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं, घर सो। हमें दुनिया भी रखनी है, हमें दीन भी रखना है, और हमें दोनों बातों के लिए कि हम दुनिया के अंदर भी तरक्की करें और हम दीन के अंदर भी तरक्की करें। हर जमाने के अंदर हमारा इमाम हमें दौरवनी देता रहा। ईस्ट अफ्रीका के अंदर मौला ने देखा कि मेरे रूहानी बच्चों की दुनिया खराब हो रही है। उधर बात तो दुनिया की थी, जमात खाने तो अभी भी चलते हैं, और परोड़िया बंदगी करने के लिए कोई राज उधर ईस्ट अफ्रीका का कोई मना नहीं कर रहा, बंदगी के लिए कोई मना ही नहीं। हजर इमाम ने देखा कि मेरे बच्चों की दुनिया खराब हो रही है, तो उसकी दुनिया बचाने के लिए आप लोगों को कनाडा अमेरिका भेज दिया कि आपकी दुनिया खराब ना हो, क्योंकि दुनिया भी मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी दुनिया मजबूत नहीं होगी तो हम अपना दीन मजबूत नहीं कर सकते। दीन को मजबूत करने के लिए दुनिया का मजबूती चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल नबियों के सरदार, मां की तरह दया वाले, रहम वाले। उन्होंने भी जब देखा कि काफिरों को समझा समझा के थक गया हूं और दीन नहीं फैल सकेगा जब तलक के तलवार नहीं चलाई जाएगी, तो अली को कहा, या अली अभी तलवार चलाओ, और अली ने तलवार निकाली। अली ने तलवार निकाली, 100,000 राजा मारा, मोहम्मद का कलमा पढ़ाया। जमाना ऐसा आया तो इस तरह से काम किया। रसूलुल्लाह ने 17 जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी, छोटी छोटी लड़ाइयां तो और भी थी। काफिरों के सामने मौला ने तलवार निकाली और उनको मारा। बद थे, खराब थे, उनको काट के फेंक दिया। एक अच्छा जो गार्डनर है, माली है, आप अपने घर के अंदर प्लांट रखते हो, कभी वो प्लांट की एक कोई टहनी, एक ब्रांच सड़ गई है तो क्या करोगे? कत्तर लेके उसको काट डालोगे। ये खुदा ताला की हिकमत है। इसी तरह से हमारे अंदर भी कभी बद और खराब, बुरे गुनाह के विचार आते हैं, उसको काट के फेंक दो, उनको निकाल डालो। अली को याद करो, अली की मदद मांगो, या मौला, या हज़रत इमाम, میرے اندر یہ فلانی بھول ہے. آپ کو میں خالی ایک مثال دیتا ہوں, ایگزامپل, میں بہت جھوٹ بولتا ہوں ایسا سمجھ لو. یا مولا میں اس بات کا کانشیس ہوں میں بہت جھوٹ بولتا ہوں لیکن میری عادت پڑ گئی جھوٹ دینے. یا مولا تو رحم کر کے میری جھوٹ کی عادت چھوڑا. اگر ایک عادت آپ نے چھوڑ دی تو دوسری عادت کے لیے آپ کو طاقت مل جائے گی, دوسری عادت خود بخود ویک ہو جائے گی. جو جو آپ مولا کے پاس سے مدد مانگتے رہو گے اپنی بدیاں برائیاں دور کرنے کے لیے, ہر روز دعائیں مانگو, اس کی مدد کے بغیر وہ نہیں چھوٹیں گی. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہتا ہے مشنری صاحب کل آپ نے وائز کی, ایسٹ افریقہ کی بات ہے, کل آپ نے وائز کی سگریٹ اور شراب کے لیے. کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں مشنری صاحب میری مجھے چھوڑنا ہے, میں جانتا ہوں بہت بری چیز نہیں چھوٹتی. میں بولا تو نہیں چھوٹتی, روز جماعت خانے آؤ, ہر روز دعا سے پہلے آؤ, مگر دعا سے پہلے ایک گھنٹے تک سگریٹ نہیں پینا, برش کر کے اچھی طرح سے تیرے بدن اور منہ میں سے اس کی بانس نہیں آنی چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں باہر سگریٹ پی کے جماعت خانے کے اندر انٹر ہوتے ہیں, کپڑوں میں سے بھی بات آتی ہے, منہ سے بھی بات آتی ہے.